नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से, नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर कि मधुर रागिनी का साज भर दे, सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है, यह जीवन की गति रही है। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं हरदम जलती रही हैं। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है, संभव होना है फिर भी। उठो वैरागियों, उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झंकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।
ओम शांति। अब तक सुमनों पर चलते थे, अब कांटों पर चलना सीखे। खड़ा हुआ है अटल हिमालय, दृढ़ता का नित पाठ पढ़ा था। बहे निरंतर ध्येय सिंधु तक, सरिता का जल कण बतलाता। अपने दृढ़ निश्चय से पथ की बाधाओं को ढहना सीखे। अब कांटों पर चलना सीखे, अब तक सुमनों पर चलते थे। अपनी रक्षा आप करे जो, देता उसका साथ विधाता। अन्यों पर अवलंबित है जो, पग पग पर वह ठोकर खाता। जीवन का सिद्धांत अमर है, उस पर हम नित चलना सीखे। अब कांटों पर चलना सीखे, अब तक सुमनों पर चलते थे। हम में चपला सी चंचलता, हम में मेघों का गर्जन है। हम में पूर्ण चंद्रमा चुंबी, सिंधु तरंगों का नर्तन है। सागर से गंभीर बने हम, पवन समान मचलना सीखे। अब कांटों पर चलना सीखे, अब तक सुमनों पर चलते थे। उठे उठे अब अंधकार में, जीवन पथ आलोकित कर दे। निविध निशा के गहन तिमिर को मिटा आज, जग ज्योतित कर दे, तिल तिल कर अस्तित्व मिटा दे, दीप शिखा सम जलना सीखे, अब कांटों पर चलना सीखे, अब तक सुमनों पर चलते थे। ये स्वशिक्षण की साधना है, प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, स्वयं को शक्तिशाली बनाने की ये साधना है। जिसने स्वयं को जीत लिया उससे अधिक शक्तिशाली इस संसार में कोई भी नहीं। स्वयं की इच्छाओं को और तृष्णाओं को और वासनाओं को और भूख प्यास और नींद को जिसने जीत लिया उससे अधिक पावरफुल इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। जो निडर है वो बेहद में, जो महावीर होंगे सुबह की साकार मुरली उनको क्या कोई बात की परवाह नहीं करेंगे, निडर रहेंगे, डरेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए विनाश तो होना ही है। महावीर अर्थात निडर, महावीर अर्थात शक्तिशाली, कुछ भी हो जाए डरना नहीं। इस संसार में सदा से ही दो बातें चलती आई है द्वापर से, पॉजिटिव निगेटिव। ऐसा हो नहीं सकता कि जहां पॉजिटिव लोग हो वहां निगेटिव ना हो। राम की कहानी रावण के बिना अधूरी है, देवताओं की कहानी असुरों के बिना अधूरी है। एक तरफ वो लोग होंगे जो संपूर्ण नीति में नैतिकता में स्थित है, तो दूसरी लक वो लोग दूसरी तरफ जो षड्यंत्र करने वाले हैं, और ये हमेशा साथ साथ रहेंगे। एक तरफ वो जो संवेदनशील है, दूसरी तरफ वो जो निष्ठुर हृदय है, एक तरफ वो जिनके जीवन में मूल्य है, दूसरी तरफ वो जो भ्रष्ट है, और ये दोनों ही एक ही जगह पर होंगे और साथ साथ चलेंगे। कौरव और पांडव एक ही परिवार से थे, संपूर्ण निगेटिविटी के साथ भी कुछ लोग ऐसे ही थे जो संपूर्ण पॉजिटिव थे, और यही खेल है। उनकी निगेटिविटी से उनकी इनकी पॉजिटिविटी प्रभावित नहीं हुई कभी भी, उसमें तो और ही निखार आया। एक तो वो है कि जो निगेटिविटी से प्रभावित हो गए, कुंभला गए, मुरझा गए, उदास हो गए, पर दूसरी तरफ वो भी है जिनकी पॉजिटिविटी बढ़ती ही गई। एक तरफ निगेटिविटी बढ़ रही है, एक तरफ पॉजिटिविटी बढ़ रही है। एक तरफ वो है जो स्वार्थी है, दूसरी तरफ दूसरे है जो निस्वार्थता की पराकाष्ठा पर है। एक तरफ वो है जो निंदा करते हैं, ग्लानी करते हैं, अपमान करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो दूसरी तरफ प्रेम करने वाले भी है, और दोनों साथ साथ चल रहे। राइट क्या है ये बाबा ने बता दिया है, सुबह का वरदान शुद्ध भावनाएं हो, प्योर भावनाएं हो, शुद्ध भावनाएं हो। चाहे कोई इंसल्ट करने वाला हो, चाहे गाली देने वाला हो, या ग्लानी करने वाला। बाबा को कितनी गालियां दी, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा। कोई ग्लानी करे, निंदा करे, अपमान करे, घृणा करे, नफरत करे, फिर भी उसके प्रति शुद्ध भावना है, अनकंडीशनल प्रेम, टॉन्ट करे, कमेंट करे, क्या कुछ करे, सब कुछ करे, ब्रह्मा ब्रह्मा के लिए ये सब कुछ हुआ, परंतु स्थिति कैसी रही, उनके प्रति कभी भी घृणा का भाव नहीं, नफरत का भाव नहीं। और जो घृणा करने वाले और नफरत करने वाले खुद भी अंदर से जानते हैं, फिर भी परवश है, ग्रहण लगा हुआ है, क्या कर सकते हैं। जब भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ग्लानी करता है, निंदा करता है, अपमान करता है, उसके कारण क्या होते हैं, मुख्यतः तीन ही कारण हो सकते हैं। यदि वो ज्ञानी जन है तो पहला ईर्ष्या, पहला कारण ईर्ष्या। हम जो नहीं कर पाए अगर कोई कर रहा है तो क्या होता है, ईर्ष्या होती, आग लगती है, जलन होती है, सहन नहीं कर सकती आत्मा। दूसरा खालीपन है, लंबा समय हो गया है पर भरा नहीं है खुद को, खाली रह गई आत्मा, यहां कुछ कुछ कितना कुछ करने को था, रोज की मुरली में आ रहा है, कल भी और आज भी, पहले साक्षात्कार होगा फिर सजा। आज भी कहा माफी मांग लो बाप से, तौबा ले लो, खालीपन रह गया है। अब ये खालीपन को कैसे भरे। तीसरा ज्ञान योग की कमी, ज्ञान में रुचि नहीं, न योग में रुचि, तब व्यक्ति क्या करता है, निंदा और ग्लानी। वो चाहते हैं हम भी करें पर सारे मार्ग खुद ही अवरुद्ध कर दिए हैं। अब वो स्टेज आ चुकी है कि आगे बढ़ने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, अब समय है केवल निंदा, तब नहीं किया। और ऐसों की कमी नहीं है तो क्या किया जाए। परंतु बाबा के क्या महावाक्य है आज, घृणा नहीं, नफरत नहीं, और प्रेम करो, इसका अर्थ ये भी नहीं कि जाकर किसी की खुशामत करो। प्रेम करो अर्थात ये भी नहीं कि हम उसकी हर बात में सहमत हो जाएं। प्रेम करो इसका अर्थ ये नहीं कि हम हां में हां मिलाए। प्रेम करो इसका अर्थ ये नहीं कि आसक्त हो जाए। प्रेम करो इसका अर्थ ये नहीं कि उसमें मोह हो जाए। प्रेम को समझना ये बहुत ऊंची बात है। भगवान एक तरफ प्रेम का सागर है, तो जहां धारणाओं की और मर्यादाओं की बातें आती है वहां वो विकराल रूप धारण करता है। शिव रुद्र भी है, रौद्र रूप धारण करता है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि उसमें प्रेम की कमी है। लव और लॉ साथ साथ चलते हैं उसके उसमें। तो ये जो भावनाएं हैं ये हमें बहुत प्रभावित करती है। राधर, हम जो कुछ निर्णय लेते हैं दिनचर्या में वो भावनाओं के आधार पर लेते हैं, ना कि तर्क के आधार पर। मन कहता है ये करना चाहिए, तर्क, परंतु निर्णय अल्टीमेट जो होता है अंततः वो भावनाओं के आधार पर लिया जाता है। हम किसी से प्रेम करते हैं उसमें कोई भी विशेषता नहीं, अगर दुनिया की दृष्टि से देखे फिर भी उससे प्रेम है। क्यों? क्योंकि भावनाएं उसमें बैठ गई है। प्रेम भावनाओं के आधार पर है। आज की सारी मुरली प्रेम पर है। आशिक माशुक तुम्हारे अंदर, सबसे पावरफुल वाक्य आज की मुरली का, तुम्हारे अंदर रूहानी प्यार की आग चली हो, लगी हुई हो, जैसे जैसे संसार में काम क्रोध की आग होती है, वैसी रूहानी प्यार की आग। तो आज इस प्राणी की यात्रा में और एक टूल हम लेंगे और वो है भाव और भावनाएं। इस यात्रा में हम ढेर सारी चीजें ऐसी ले रहे हैं जो हमें हम में शक्ति भरते। अब तक वो हमारी ऊर्जा को नष्ट करती थी, अब वो ही कारण बन जाए हमें शक्ति देने की। तो हमारा निर्भर, हमारी जो निर्भरता है आउटसाइड न्यूट्रिशन पर, वो अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि वही हमारे सभी दुखों का कारण है। जैसे एक टूल हमने लिया था कर्म, सेवा करने जा रहे, हमेशा ये होता है कि सेवा करने के बाद थकान महसूस होती। यहां हमने क्या किया, कर्म को ही अपनी ऊर्जा का स्रोत बना दिया। अब ये सेवा मुझे शक्ति देगी, कर्म ही भोजन है। ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं हम फूड का, ये सारे सब्स्टिट्यूट है भट्टी के पहले दिन से आज तक। ये सब क्या है, पर्यायवाची, विकल्प है। पहले वो हमें हमारी शक्ति खींचता था, अब ये संकल्प से जा रहे। अभी अभी परसों वरदान था ना, स्लोगन था, सेवा क्या है तुम्हारा, सौभाग्य है। सेवा करते हुए क्या आज सोचना है, मैं भाग्य बनाने जा रहा हूं, ये सेवा मुझे सौभाग्य प्रदान करेगी। जितने लोगों से मिलूंगा, 60 लोगों से मिल रहे, ये 60 आत्माओं की दुआ है। ये क्या है, 60 आत्माओं की दुआ मिल जाना एक दिन में, कितनी बड़ी बात है। धंधा 60 आत्माओं की दुआ एक ही दिन में, लोगों को मिलती है ये दुआ है। लोगों को बद दुआएं देते हैं संसार में, काम ही ऐसे करते हैं, जहां जाते हैं कमेंट, जहां जाते हैं दुख दर्द, जहां जाते हैं एक दो को घायल करके आ जाते। हम क्या कर रहे हैं, असंख्य आत्माओं की दुआएं ले रहे, दुआओं पर पल रहे, पालना ही वरदानों से हो रही है, अनगिनत आत्माओं की दुआ है। हम देखते हैं हॉस्पिटल में कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका कोई भी नहीं होता है, और उनको जो लाने वाले होते हैं वो पड़ोसी होते हैं या अपरिचित होते हैं। सड़क पर व्यक्ति चल रहा है, मिर्गी का दौरा आया, गिरा है, कोई दूसरा लेके आता, हम पूछते क्या है, बोलते हमको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। मानव था, दुआएं मिलती है निस्वार्थ भाव से सेवा करने से। इस यज्ञ की सेवा करने से अपनापन इस यज्ञ के प्रति, द लव फॉर दिस हाउस ऑफ गॉड बर्न्स इन मी लाइक फायर। बाइबल का वाक्य है, कई बार सुनाया, जीसस क्राइस्ट क्या कहता है, तुम लोगों ने मेरे पिता के घर को क्या कर दिया। मंदिर में प्रवेश करता है, सिनेगॉग में, यहूदियों के मंदिर में, देखता है लोग क्या कर रहे हैं वहां, एक एक को पटक पटक के फेंकता है सारी चीजें वहां की, कोई जुआ खेल रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। वो कहता है, यू हैव टर्न माई हाउस ऑफ गॉड इन टू द डेन ऑफ थीव्स, चोरों का अड्डा बना रखा है। और फिर कहता है, इस प्रभु के घर के लिए मेरे हृदय में जो प्रेम है कैसा है, आग की तरह। तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में प्रेम रूहानी प्यार की आग है, सुबह की साकार मुरली। तुम्हारे हृदय का एक एक रक्त की बूंद इस घर के लिए प्रेम से जल रही है, इतना प्यार इस यज्ञ के लिए। और जिसमें ऐसा प्यार होगा उसमें कहीं दिखावा नहीं होगा, वो गुप्त ही होगा। तो प्रेम बहुत ऊंचा शब्द है, इसको समझने के लिए एक जीवन भी कम है। प्रेम वैसे ही है जैसे कि पानी में तैरना, जब तक हम प्रेम करते नहीं है, प्रेम क्या है यह समझ में नहीं आ सकता। कोई कहता है कि मुझे तैरना सीखना है, परंतु मैं तैरना तभी सीखूंगा, पानी में तभी उतरूंगा जब मुझे तैरना आता हो। उसका तर्क सटीक है, अर्थपूर्ण है, बात एकदम सही कही है। अगर हमें तैरना ही नहीं आता तो पानी में कैसे उतरे, डूब नहीं जाएंगे? पहले पूरा सीख लेंगे, तैरने पर जितनी किताबें हैं वो सारी पढ़ लेंगे, उस पर पीएचडी कर लेंगे, पूरी मास्टरी हो जाएगी, उसके बाद ही ये जोखिम ले सकते हैं। अन्यथा कितना बड़ा खतरा है उसमें, बिना सीखे तैरना, ये तो गलत भी हो गया ना, जान भी जा सकती है। हाँ, पर जो भी है, तर्क तो एकदम सटीक है, परंतु तैरना तैरने से ही सीखा जा सकता है। उसी तरह प्रेम, प्रेम करने से ही सीखा जा सकता है। प्रेम पर कितनी भी चर्चा है, प्रेम पर कितनी भी मुरलियां पढ़ लो, तुम्हारे हृदय में प्रेम की आग होनी चाहिए। पढ़ तो लिया, आगे क्या? ये आग क्या होती है, उसका अनुभव कुछ है ही नहीं, तो फिर कैसे? जैसे तैरना तैर कर सीखा जाता है, वैसे प्रेम भी प्रेम कर कर ही सीखा जाता है। आज की मुरली में पूरा पूरा 2-3 बार आया है, पूरा पूरा लव, पूरे पूरे योगी, पूरा पूरा तीसरा पुरुषार्थ, तुम्हें पूरा पूरा योगी बनना है, पूरा पूरा लव होना चाहिए, पूरा पूरा पुरुषार्थ कोशिश करनी है। तो 3 बातें हैं हमारी, जो भावना है, फीलिंग्स, भाव भावना है, इसका मुख्य एक जो कारण है निर्माण होने का, वो है हमारा आहार। इस आधार पर फीलिंग्स निर्माण होती है। और दूसरा, जैसा आहार होगा वैसा ही मन होगा, तो ये जुड़ा हुआ है। इसलिए फीलिंग्स जब निगेटिव हो जाती है तो व्यक्ति अपने को शांत करने के लिए भोजन की तरफ भागता है, उसको कहते हैं इमोशनल ईटिंग। तृप्त करता है खुद को, या फिर जब इंटेंस इमोशंस निर्माण होते हैं तब भूख कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये जो रिलेशनशिप है हंगर एपिटाइट और ईटिंग का, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत डेलिकेट और बहुत कॉम्प्लेक्स, पर इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे 2 व्यक्तित्व है। कौन से हम? 2 है, हम 2 है, ये तो सबको पता है, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, एक कॉन्शियस एक सबकॉन्शियस, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, मेल फीमेल, एक दिखाते हैं और जो अंदर है वो। और बताओ हम 2 कौन है? एक थूल, एक सूक्ष्म, एक बाहर एक अंदर, एक आउटसाइड एक इनसाइड, एक जो वास्तव में है और एक हम जो दिखाते हैं वो, और एक प्रेजेंट, एक कहने वाले एक करने वाले, और कहते कुछ करते कुछ, और नहीं नहीं हम 2 है, हम 2 कौन से? हम 2 है, एक वो है वो और दूसरे जो नहीं है वो, हम 2 है, कौन से? एक फिजिकल और एक फिजिकल से परे, एक आत्मा और एक शरीर, एक श्रीपद पर चलने वाले, तर्क पर चलने वाले, एक भावना वाले, एक दिमाग वाले, एक दिल वाले, हम 2 है। एक मैं विद फूड और एक मैं विदाउट फूड, ये दो है। एक मैं विद फूड और एक मैं विदाउट फूड। जब मैं विदाउट फूड रहता हूं तो मेरी भावनाएं दूसरी है, मेरी फीलिंग्स दूसरी है, टोटल डिटैचमेंट की अवस्था रहती है सतह सहज। जिन्होंने अनुभव किया होगा, न खाया न पिया एक दिन निर्जला, उस दिन की जो अवस्था है, उस दिन मैं आत्मा के नजदीक हूं, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। जैसे ही कुछ भी डाला, इवन पानी भी, तो जो मैं हूं वो अलग है। और फिर तीन बार खाया, वो तो बात ही मत पूछो, वो तो मैं कुछ और ही हूं एकदम, उसका मेरे होने से कोई संबंध ही नहीं है। विथ फूड एक मैं हूं और विदाउट फूड मैं हूं, अब आपको डिसाइड करना है। हम धारणाओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम दो व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। ये दो व्यक्तित्व है, ये आपको अनुभव करना है तो ही पता चलेगा कि मैं वास्तव में हूं कौन। क्योंकि भोजन ने तुमको ढक रखा है, फीलिंग्स इमोशंस भोजन ढक देता है, इसलिए ये दो है। जब कुछ भी ग्रहण किया जा रहा है, उस समय का जो मैं हूं वो कुछ और ही है, उसकी फीलिंग्स, उसकी भावनाएं, उसके इमोशंस कुछ और है। और जब उसने ढका नहीं है, जिस दिन इवन 6 घंटा भी, तो भावनाएं फीलिंग दूसरे। इतना जबरदस्त ये कनेक्शन है, इतना डीप ये कनेक्शन है, और इससे गहरा और कोई कनेक्शन नहीं है। और अगर इसको स्वयं को समझना है कि मैं वास्तव में हूं क्या, ये जो यात्रा है पूरी भट्टी की, मैं कौन हूं की यात्रा है। इस भट्टी का एक ही लक्ष्य है कि मैं कौन हूं, ये समझ में तभी आएगा जब आवरण को हटाओगे। आवरण ने तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को ढका है, हमारे वास्तविक स्वरूप को ढका है, ऐसा ढका है कि हमें खुद ही नहीं पता मैं हूं कौन। हाँ, खाली रटते चले जा रहे हैं, मैं आत्मा हूं और मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, और लिखते जा रहे हैं डायरी में और कमेंट्री करा रहे कर रहे, परंतु अनुभूति शून्य है। अनुभूति तभी होगी जब यह आवरण हटेगा। इसलिए जितनी भी चर्चा है, जितनी भी भट्टियां, जितनी भी क्लासेस और जितनी भी रिट्रीट्स, जिसमें इस एक आयाम की चर्चा नहीं है, वो अपूर्ण है। संडे की मुरली 93 की है, बाबा पूछ रहे इस साल अव्यक्त बन जाएंगे, इस साल ये हो जाएगा, इस साल का ये होमवर्क है, कोई हुआ क्या? उस साल 94 आ गया, क्योंकि सब पर काम किया गया, ये एक ही आयाम है जो छूटा हुआ है, ये मिसिंग लिंक है। और जो कुछ बाबा ने बताया वो इतना सूक्ष्म बताया और इतना गुप्त रीति से बताया है कि पकड़ना रह गया। ऊपर से लेकर नीचे तक मिस हो गया है। इसलिए सभी कहीं ना कहीं, और बाबा के ही महावाक्य, आज की ही मुरली में, बीमारियां जो आती है तुम्हारा हिसाब किताब है, अच्छा वाक्य मिल गया सबको, इसको ही पकड़ लेते हैं। कुछ भी हो गया तो हिसाब किताब के माथे पर थोप दो कर्म, पर ये भूल रहे हैं कि और भी कुछ है, प्रकृति के भी कुछ नियम है, नेचर्स फर्स्ट लॉ, और वो सब पर लागू होते हैं, महात्मा और धर्मात्मा, पुण्यात्मा पापात्मा पर। जहर खाओगे, महात्मा खा रहा है या फिर पापात्मा खा रहा है, सेम असर करेगा दोनों शरीरों पर और इमोशंस पर भी। तो प्राणिक इमोशंस का बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि हमारा आधा से ज्यादा ईटिंग इमोशनल ईटिंग है, और हम जो खा रहे हैं वो मन को भी प्रभावित कर रहा है, हमारे इमोशंस को प्रभावित कर रहा है। किस प्रकार की भावना हो, 5 पॉजिटिव इमोशंस की चर्चा संडे की मुरली में हुई थी, आज हम उसको और बढ़ाएंगे। किस प्रकार के इमोशंस हो, क्योंकि इमोशंस टूल है, क्योंकि निगेटिव इमोशंस होते हैं, घृणा के इमोशंस होते हैं, नफरत के इमोशंस होते हैं, जेलसी के इमोशंस होते हैं, बदले के भावना होते हैं। क्या ऐसा व्यक्ति जो इन सब से भरा हुआ है शांति से जी पाता है? क्या उसे नींद आती होगी? कभी नहीं। दिखाता जरूर है कि मैं शांत हूं, पर अंदर से दुखी है। तो सबसे पहली बात बाबा ने बताई थी, कौन सा इमोशन? कल्याण की भावना सबके प्रति। दूसरा, स्नेह की भावना सबके प्रति, स्नेह। उसको हम दो कर देते हैं, सहयोग तीसरा, स्नेह एक, तीसरा सहयोग या फिर मदद करना, दूसरों को मदद करनी। इसके अपोजिट में क्या है? दूसरे के मार्ग में बाधा बनना। कोई पुरुषार्थ कर रहा है उसको नीचे गिराना, इससे कितनी बद्दुआएं मिलती है। आत्माएं बद्दुओं का स्टॉक जमा करती जा रही है सूक्ष्म में। हमें अपने दुआओं का स्टॉक पता है, पर बद्दुओं का स्टॉक हमको कुछ भी खबर नहीं है। सूक्ष्म में कितनी आत्माएं हर्ट हो रही है। तीसरा, चौथा, हिम्मत और उल्लास बढ़ाने की भावना। किससे गलती भी हो जाए तो भी उसको आगे बढ़ाना। अगला, अपनापन। अगला, आत्मिक। आत्मिक उसके बाद और 15-20 अलग अलग प्रकार की भावनाएं, जिसके हम केवल नाम गिनाएंगे, फिर मुख्य चर्चा पर आएंगे। समता की भावना, हरेक के प्रति समभाव, या स्वयं के लिए समभाव, स्वयं के शरीर पर जो संवेदनाएं उठ रही है उसके प्रति समता, जीवन में जो परिस्थिति आ रही है उनमें समता, सुख दुख सब प्रकार की परिस्थिति आएगी। एक पॉजिटिव व्यक्ति और इर्द गिर्द सारे निगेटिव, फिर भी अपनी पॉजिटिविटी नहीं खोता है वो, ये विजय है। और तीन प्रकार के लोग हैं संसार में। एक वो जिनमें दिव्य गुण बचपन से ही है, उन्होंने कोशिश भी नहीं की, सदैव है ही है, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है। ऐसे तो बहुत कम है जिनको वरदान ही प्राप्त है। इनके लिए हम कहते पता नहीं किस मिट्टी का बना है, उसने उसको इतना सताया, अब वो बीमार है तो उसी की सेवा में लगा है। अरे हम कहते तुम बुद्धू हो, तुम मूर्ख हो, इतना तुमको सताया जीवन भर, अब उसी की सेवा में लगे हो, पर वो बने ही पता नहीं किस मिट्टी के। जन्म की पुरुषार्थ है उनका पिछले जन्मों का, कि बचपन से दे आर बॉर्न ग्रेट। शेक्सपियर का महावाक्य है, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन देम। तो सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है? मनुष्यों की, जो दिव्य गुणों के साथ, ऐसी ऊंची पॉजिटिव भावनाओं के साथ ही, सद्भावना के साथ ही उन्होंने जन्म लिया है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर मारने का प्रयत्न किया हमें, वो जब मर रहा है तो हम उसके बचाने की कामना कर रहे हैं, हे प्रभु इसे बचा ले। कोई दूसरा उसे मार रहा है, उसके चरणों में गिर रहे हैं कि इसे मत मारो। किसके प्रति? जिसने जीवन भर हमें मारने की कोशिश की थी। ये किस लेवल की आत्मा है? ये टॉप लेवल की आत्मा है, बहुत लाखों में कोई एक होगा, पर है, जरूर है। और यदि हम देखें तो ऐसी कोई ना कोई आत्मा हमारे जीवन में भी हुई है इर्द गिर्द कहीं ना कहीं, हमने देखा भी है उनको सबने। तो ये पहली आत्मा है। दूसरी, जो ऐसे गुणों के साथ जन्म नहीं लिए, पर उन्होंने पुरुषार्थ कर अपने आप को बनाया, इसमें अधिकतर हम सब है। हम कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि हम भी ऐसा बने, पर बहुत कठिन काम है, जो आज का वरदान है, बहुत कठिन और कभी कभी असंभव सा है, पर यह क्रांति ही असंभव को संभव करने की। और तीसरे भी है, बनने नहीं चाहते महान, जबरदस्ती थोपी गई है महानता। दया सम आर थर्स्ट विद ग्रेटनेस, ये कौन है आप लोग ढूंढो, ये भी कैटेगरी है। दो, समता का भाव, उसके बाद में साक्षी भाव, ये भावना को डेवलप करना है। और एक बात, फीलिंग्स को कल्टीवेट करना है। जैसे आदतें होती है, कैसे बनती है? रिपीटेशन से। उसी तरह ये भी बन सकता है, इनको भी प्रैक्टिस चाहिए, बस। दीज आर ऑल्सो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ये भी हो सकता है। किसी लेखक ने स्कूल ऑफ गॉड बुक्स में कहा है, ये सब दीज आर अवर बैड मेंटल हैबिट्स है, स्लीप, फूड, लस्ट, हंगर, थर्स्ट, ओल्ड एज, डिसीज, दीज आर डेथ, ये केवल हमारी आदत है मरना, हमें मरना ही नहीं चाहिए, अननेचुरल है वो कहता है, डेथ खोना ही नहीं चाहिए, तुम मरते हो क्योंकि तुम्हारी गलती है, बी एजलेस, डिसीजलेस, एजलेस, डिसीजलेस एंड डेथलेस, ये तीनों को जीतना है योगी, योगी अर्थात जिसने इस तीनों को जीता है, मृत्यु आनी ही नहीं चाहिए, ये भ्रम है, वो कहता है ये इल्यूजन है सारा, डिसीज इल्यूजन है, एक भ्रम है तुम्हारा, ये बुढ़ापा इल्यूजन है और मृत्यु भी इल्यूजन है, दीज आर बैड मेंटल हैबिट है, बहुत खराब आदत है तुम्हारी मरने की, बंद करो ये आदत, इट्स अ बैड मेंटल हैबिट। एक किसी और भाषा की मूवी हमने तो नहीं देखी, पर उसमें ऐसा दिखाया है कोई दूसरे ग्रह से एक स्त्री आती है और उसका जो शरीर है चार्जिंग से चलता है, बस उसको चार्जिंग चाहिए रहती है और कुछ नहीं चाहिए उसको, वो आश्चर्य हो जाती है देख के लोगों को, ये रेस्टोरेंट और ये सब देखिए क्या कर रहे हैं लोग, ये क्यों खा रहे हैं, क्योंकि वो जिस ग्रह से आई है वहां कोई रेस्टोरेंट नहीं है, वहां कोई भोजन नाम की वस्तु नहीं है उसको केवल चार्जिंग लगती है बस। तो ये भट्टी भी हमारी किसकी है, डाइजेशन के शरीर से एब्जॉर्प्शन का शरीर बनाना है, एब्जॉर्प्शन के शरीर से चार्जिंग का शरीर बनाना है, ये यात्रा है धीरे धीरे, इसके लिए धीरे धीरे सभी लिक्विड एरियंस पर आते जाएंगे, क्योंकि लिक्विड से हमें ऊर्जा बहुत बचेगी, सॉलिड हमारी ऊर्जा को खींच लेता है, उसमें वो भोजन हमें एनर्जी नहीं दे रहा, एनर्जी खींच रहा है। उसके बाद में अगली भावना है क्षमा की भावना, रहम की भावना, एक है क्षमा एक है रहम, क्षमा कर देना किसी को, रहम की भावना। उसके बाद में अगला है सहानुभूति की भावना, अगला है समानुभूति की भावना, एम्पति, सहानुभूति, सिंपति, दूसरा दर्द में है तो हमें लगे मैं दर्द में हूं। श्री रामकृष्ण परमहंस उनके जीवन के अंतिम आठ मास, जीवन के अंतिम आठ मास डॉक्टर सरकार उनको देख रहे थे और डॉक्टर सरकार ने एक दिन कहा कि रामकृष्ण का जो कैंसर है वो बढ़ता जा रहा है और उनको पीड़ा हो रही है, उनको कहीं और शिफ्ट करो दक्षिणेश्वर से, अंतिम आठ मास काशीपुर में शिफ्ट होते हैं कोलकाता नॉर्थ, और वहां पर एक बहुत भव्य गार्डन लिया जाता है और वहीं पर सारे लोग आ जाते हैं, माँ शारदा और उनकी जो एक कजिन होती है लक्ष्मी, वो उनके भोजन की प्रबंध करती है, 12 जो सन्यासी थे वो आना जाना करते और बाकी जो गृहस्थ शिष्य थे वो आते जाते रहते हैं उनकी देखभाल करने के लिए, क्योंकि शरीर जर्जर हो रहा है, खून की उल्टियाँ हो रही है, बीच बीच में खून निकल रहा है कफ कफ में, एकदम शरीर दुर्बल हो रहा है। ऐसे समय में शास्त्रधर पंडित होते हैं, वो कहते हैं हमने सुना है अगर योगी अपने मन को जहां रोग है वहां फोकस कर दे, केंद्रित कर दे, तो वो रोग से मुक्त हो सकता है, आप क्यों नहीं ऐसा करते, आप तो इतने बड़े योगी हो। वो कहता है मूर्ख मैं अपना ध्यान उस मां के चरणों से हटा के अपने गले में लगाऊ, ये शरीर इतना शूद्र, बैग ऑफ बोन्स, बैग ऑफ स्टूल, इस पे मैं अपने शरीर को लगाऊ, ये नहीं हो सकता। पर नरेंद्रनाथ और बाकी जो शिष्य होते हो कहते नहीं आपको करना पड़ेगा, हमारे लिए करना पड़ेगा, माँ के पास जाओ, काली माँ के पास और प्रार्थना करो कि हे माँ इस दर्द को कम कर दे। ठाकुर कहते हैं क्या तुमको लगता है मुझे पीड़ा कम हो रही है, मैं तो खा भी नहीं सकता हूं, एक निवाला नहीं जाता है हलक से, इतनी पीड़ा होती है, थ्रोट कैंसर है, मुझे दर्द तो होता है, खा नहीं पा रहा हूं ना, लिक्विड पर है, क्या करे, कुछ नहीं पी पाता है, पीते समय भी दर्द होता है। वो कहते नहीं आपको करना ही पड़ेगा, सारे 12 शिष्य होते हैं, वो कहते करना ही पड़ेगा, वो कहते आप कहते हो तो करता हूं। वो जाते हैं माँ के पास, प्रार्थना करते हैं हे माँ मेरे गले का जो दर्द है कम कर। तो माँ क्या कहती, माँ क्या कहती है, तुमको शर्म नहीं आती, ये जो इतने मुंह हैं, तुम क्या इनके द्वारा नहीं खा रहे हो? ठाकुर आके कहते हैं, मां ने मुझे ऐसे कहा कि ये तुम सब जो है, क्या मैं उनके द्वारा नहीं खा रहा हूं? आगे मुझे कुछ उससे मांगने की हिम्मत ही नहीं हुई, इसलिए मैं वापस आ गया। आर यू नॉट ईटिंग थ्रू दीज मल्टीपल माउथ्स? भावनाएं बहुत ऊंचे, जैसी हमारी भावनाएं होगी वैसे हम होंगे। अपनी भावनाओं को बदलना है, सब कुछ बदलता है अपने आप। और भावनाओं के को बदलने के लिए क्या करना है? भोजन को बदलो। सो इट इज फूड, इमोशंस एंड फूड, ये कनेक्शन है। फूड से इमोशंस जनरेट होते हैं, और जैसे इमोशंस होंगे फिर हम वैसा ही खाते हैं। फूड इमोशंस भोजन को अफेक्ट करते हैं। अगर निगेटिव इमोशंस है तो उस दिन ज्यादा खाएंगे, उसको कहते हैं इमोशनल ईटिंग। भूख की वजह से नहीं खा रहे, इंटरव्यू में फेल हो गए इसलिए खा रहे, किसी ने अभी अभी हमको डाटा कॉमेंट किया, हमारा नुकसान किया, हानि हो गई, देवाला निकल गया, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, बोर्डम है, इसलिए खाते। या तो कम या तो ज्यादा, या तो नहीं खाएंगे, कुछ ना कुछ भोजन पर निकालेंगे जरूर। ये तीनों का कनेक्शन है, ईटिंग फूड, ईटिंग फूड। टेंशन है, स्ट्रेस है, फूड, सारा गुस्सा भोजन पर, या दूसरों को नहीं दिखाएंगे पर खाएंगे, क्योंकि भोजन एक कंफर्ट है। तो भावनाएं, और कौन कौन सी भावनाएं होती है? कृतज्ञता का भाव, वात्सल्य का भाव, मातृत्व का भाव। एक माँ होती है, मातृत्व का भाव होता है, सब मेरे बच्चे सब खाए, खुद खाती है पर उसका पेट भर जाता है। हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से मैंने अक्सर यह देखा है, मेरी थकन उतर जाती है। हम लोग जब सेवेंथ में थे बचपन में, तब ये कविता थी, अब तक याद है। हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से मैंने अक्सर यह देखा है, मेरी थकन उतर जाती है। कोई ठोकर लगी अचानक, जब जब चला सावधानी से, पर बेहोशी में मंजिल तक पहुंचा हूं जहां आसानी से। प्यासे अधरों को अपनी मुरली पर धर देने से मैंने अक्सर यह देखा है, मेरी प्यास मिट जाती है। दूसरों की सेवा करते करते क्या हो जाता है? खुद की थकान खत्म, सब भूल जाता है। अहोभाव से, उस भाव से, अगर उस प्रेम से हम सेवा करते हैं तो याद रहता है क्या कुछ? कुमार सेंटरों पे कितनी सेवा करते, भान रहता है भोजन का? सब भूल जाते। बड़ा प्रोग्राम होता है तो दिन रात लगे रहते, बहने भाई सब लोग, सब कुछ भूल जाते। क्यों? बीमारी भी ठीक हो जाती है। बुखार था, बुखार बुखार, अगर कोई बुखार कोई पकड़ ले तो बेटर रहेगा। तो भाव, भावना है। रोनाल्डो पता है ना, फुटबॉल प्लेयर, खेल रहा है, खेल रहा है, पैर में चोट लग गई, वीडियो में दिख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, खून बह रहा है, उसे खबर ही नहीं, वो खेले जा रहा है, खेले जा रहा है। कैसा खेल रहा है, क्या जोश है, पता नहीं क्या पागलपन है, जुनून है, जुनून, इट्स अ पैशन। ऐसा उल्टा होता है और फुटबॉल को मारता है। लोगों ने ऐसी ट्रिक्स, ऐसी स्किल्स कभी देखी ही नहीं जीवन। ऐसा फुटबॉल प्लेयर, खून बह रहा है सारी दुनिया देख रही है, उसके पैर से रक्त बह रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, उल्टा फ्लिप हो रहा है, फ्लिप एंड गोल, और फिर विन हो गया, और फिर देखते हैं अरे खून बह रहा है, बुलाओ बुलाओ इसको बुलाओ, तब पता चला। पहले क्यों नहीं पता चला? क्यों? क्योंकि मन कहीं और था। सेवा पूरी होगी फिर कमर दर्द का याद आता, नहीं तो नहीं याद आता। पेन जो होता है ना, हम कहते हैं इतना पेन इतना पेन, वो पेन एक्चुअली माइंड है, वहां पर माइंड को वहां से हटा दो फिर कुछ नहीं होगा। काशीपुर के महाराज थे, काशीपुर के बनारस के महाराज, जब एनेस्थीसिया अभी अभी आया हुआ था, उनको अपेंडिक्स हो गया, विदेश के डॉक्टर आए भारत में, ये बहुत पहले की बात है, उन्होंने कहा कि आपको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, ये ऑपरेशन करना जरूरी है। उन्होंने कहा था महाराजा ऑफ बनारस कि मैं एनेस्थीसिया नहीं लूंगा, आप ऑपरेशन करते रहना, अपेंडिक्स का ऑपरेशन फाड़ते रहना, मैं एनेस्थीसिया नहीं देना। बोले ये इम्पॉसिबल है, मर जाओगे आप। बोले करते रहो। वो अपनी भगवत गीता लेके आए, भगवत गीता पर पढ़ते रहे, और डॉक्टर को कहा ऑपरेशन करो, चीरा मारा, अंदर गए, अपेंडिक्स को निकाला, वो अपनी भगवत गीता पढ़ते रहे। क्या था ये? हमको इधर इतू सा कट लगता है। आशीष भाई दवाई चाहिए, काओ जल्दी आओ, इमरजेंसी है, कितना खून बह गया। अब तो सीधा 15 था 10 हो गया होगा, इतना बह गया, ऐसे ही बोलते लोग। तो ये सारी भावनाएं हैं। जुनून तैयार करना है, अपनी भावनाओं को सशक्त करना है, दृढ़ करना है, पावरफुल करना है। जैसी भावनाएं होगी बस वैसे हम हैं। चाहे कोई कितना भी निगेटिव रहने दे हमें, वो अपनी निगेटिविटी छोड़ता है क्या? कितना अथक है, थकता ही नहीं कभी। 15 साल 20 साल 50 साल हो गए, अड़ी गए अपनी निगेटिविटी में। हम एक साल में थक गए क्यों? तो 2-3 बातें और देखेंगे इमोशनल ईटिंग के बारे में। हमारी ये सारी अलग अलग प्रकार और भी ढेर सारी भावनाएं हैं, आप निकाल सकते हैं भावनाओं की लिस्ट, जैसे कि कृतज्ञता का भाव, सहयोग की भावना, सीखने की भावना, जिज्ञासा की भावना, देने की भावना, दातापन की भावना, सिखाने की भावना। एक लोग होते हैं जो दूसरों को बिल्कुल नहीं सिखाते। ये जो ब्रिदेरियन कॉन्सेप्ट है ना, प्राणिक लिविंग, लोग बन तो गए पर दूसरों को सिखाते नहीं, डरते हमारे जैसे ये भी बन जाएंगे, हमसे आगे निकल गए। तो कई लोग लेवल 4 पर है पर एकदम इनकॉग्निटो है, कभी नहीं सिखाते और दूसरों को बताते भी नहीं ये हमने कैसे पाया। और अगर बताते हैं, ये जो यहां पर, यहां जो हम यात्रा कर रहे हैं ना असंभव की, इसके कोर्सेस है और फीस इतनी ज्यादा है, 2-2 लाख रुपए में चलता होता है ये प्राणिक इनिशिएशन, इतनी ज्यादा फीस है कहीं कहीं। 21 डेज की इनिशिएशन है, किसी का 8 डेज है। आखी कितने लोग हैं, वाइले ब्रूक्स, उसका तो इतना ज्यादा कॉस्ट है, ये जो कुछ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उसकी, यहाँ फ्री में चल रहा है धंधा, नहीं तो ये जो चल रहा है ना, ये प्राणिक इनिशिएशन की कॉस्ट अगर आप देखो विश्व भर में हो रहा है, पर एक एक सेशन की 9 दिन के कॉस्ट कितने डॉलर्स में है। ये जो कुछ यहां सिखाया जा रहा है ब्रदरियन, आप इंटरनेट पे जाओ, वाइले ब्रुक्स का वेबसाइट देखो, आखी का 9 डेज का, 21 डेज का, 18 डेज का, 6 डेज का, हर अलग 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 लोगों की अलग अलग देख, वो वहां बुलाते हैं, कुछ ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं, उनके रिट्रीट सेंटर है प्राणिक लिविंग की, हर साल कॉन्फ्रेंस होती है, फेस्टिवल होता है जहां लोग आते हैं, पर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, टू हाई। इसलिए महत्व कम होता है जब फ्री में दी जाती। अगर इसकी कॉस्ट लगा देना तो फिर तो तो इमोशंस जो है हमारे किसको अफेक्ट करते हैं? ईटिंग को। तो इसमें हमें 3-4 चीजें, कुछ नए टूल्स आज लेंगे हम। सबसे पहले फूड जर्नल, फूड जर्नल, आप जो भी खाते हो उसका जर्नल रखना है। जर्नल अर्थात जो भी खाते हो ना उसका एक फोटो ले लेना, थाली का, जो भी खा रहे हो उसका एक फोटो ले लेना, और एक दूसरा उसका कैलोरी काउंट करना। अभी हम कैसे करते हैं वो आपको बता रहे, हम कैसे करते हैं या करते थे कैलोरी काउंटिंग। जैसे आज सुबह कोकोनट वाटर लिया, 500 ml, कैलोरी थी 95 कैलोरीज। ये इंटरनेट से मालूम पड़ेगा, गूगल में डालो, एक कप चाय पी कैलोरी कितनी है, एक कटोरी दाल पी कैलोरी कितनी। तो आज आपको कैलोरी काउंटिंग करनी है, पूरे 24 घंटे में कितनी कैलोरीज आप लेते हो। हाँ, ये चार्ट, ऐसे बहुत सारे चार्ट, अपना चार्ट खुद बनाना है। सबसे बेस्ट तरीका है अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, उसमें अपने दोस्त को ऐड करो और उसको हटा दो, तो उस ग्रुप में आप अकेले रह जाओगे। उसको नाम दो माई डाइट माई वेट, ऐसा कोई भी नाम दे सकते हैं। तो उसमें आप कुछ भी जो आपकी मर्जी का नाम है, उसमें 3 चीजें आपको डालनी है। सबसे पहले आपका आज का वजन कितना है। सपोज आज का वजन है 60 kg, ठीक है, ये वजन एक्चुअली कल का रिफ्लेक्ट कर रहा है, आज का नहीं कर रहा है, कल आपने जो कुछ खाया। दूसरा उसमें डालेंगे कैलोरीज। अब कैलोरीज, सुबह आपने लिया नारियल पानी, जैसे हम अपना बता रहे नारियल पानी लिया 500 ml, तो उसका है 95 कैलोरी। फिर बनाना स्मूदी ली, 400 कैलोरीज, फिर रात भर का पूरा हो गया 1200 कैलोरीज। तो आपको हर दिन की कैलोरीज काउंट करनी है, टोटल कैलोरीज कितनी हो रही है। वो कितनी चाहिए वो नहीं देखेंगे हम, आप अभी जो भी खा रहे हो, दाल रोटी सब्जी कुछ भी, खाली कैलोरी काउंट करनी है। फिर हम देखेंगे धीरे धीरे कैलोरीज को हम जब चेंज करेंगे तो ये भी अनुभव होगा कि कैलोरी जिस दिन कम है उस दिन वजन कम हो गया, तो उसके अगले दिन कैलोरीज बढ़ा दो थोड़ा फिर। पर हमको वजन स्टेबल रखना है अपना, जितना है उतना, चाहे किसी का ओवर वेट ही क्यों नहीं है, 100 kg किसी का हो, कम नहीं करना है, उतना ही रखो। धीरे धीरे करेंगे, यात्रा धीरे धीरे होनी चाहिए, फट से नहीं करना है कुछ भी। तो कैलोरी काउंट करना है, जैसे अभी नाश्ता करने जाओगे, सपोज आज पोहा है, तो जितना भी खाओगे उस इंटरनेट पे टाइप करो 1 कटोरी पोहा, तो कितना आता है कैलोरीज, अपनी कैलोरीज काउंट करना है। ऐसे पूरे 24 घंटे की रात तक की कैलोरीज कितनी हुई, सपोज आपकी हो रही है 1500 या 2000 कैलोरीज हो गई, तो 2000 कैलोरीज लास्ट फिगर वजन, वो तो सुबह हमने लिख लिया था वजन, और फिर क्या क्या खाया उसका एक फोटो, जो भी खा रहे हैं ना नारियल पानी फोटो लेके उसमें ये कर दो, व्हाट्सएप कर दो अपने आप को, उसमें क्लिक कर दो ये खाया। इसमें हमें अपना फूड के साथ का जो रिलेशन है वो समझ में आएगा। और फिर और एक चीज ऐड कर सकते हैं, इस समय मेरे इमोशंस क्या चल रहे, क्या रियल हंगर है या स्ट्रेस हंगर, स्ट्रेस की वजह से खा रहा हूं। रियल हंगर तो बहुत ही कम है, टाइम की वजह से खा रहा हूं, टाइम हो गया 8 बज गए मुरली खत्म चलो नाश्ते, उसकी वजह से खा रहा हूं, रियल हंगर नहीं। इमोशंस लिखो, इस समय इमोशंस कैसे चल रहे, बाबा की याद है नहीं है, क्यों खा रहा हूं क्योंकि टेस्टी है, क्यों खा रहा हूं क्योंकि कल ही किसी ने बताया था आज ये बनने वाला और ये मेरा फेवरेट है इसलिए खा रहा हूं, वो भी लिख दो इमोशन। तो ये है, इसको कहते हैं फूड जर्नल या फूड डायरी। तो इमोशनल ईटिंग यदि कम करना है, इमोशनल ईटिंग अर्थात इमोशंस डिस्टर्बेंस हो गए तो जाके खा लिया और इमोशंस ढक गए और राहत मिल गई। जैसे दारू, व्यक्ति को पत्नी मर गई क्या करता है, दारू पीता है पीता है पीता है, भूल जाता है थोड़ी देर के लिए, वैसे फूड भी क्या है, हमको भुला देता है, हमारे इमोशंस को ढक लेता है। आज गुरुवार, वो अलग बात है, भावना से खाते वो भी अच्छी बात है एक रीति से, परंतु कितना खा रहे, बिंज ईटिंग कर लेते हम, एक्स्ट्रा खा लेते, ओवर ईटिंग हो जाता है जो जरूरी नहीं है, ओवर ईटिंग करते नहीं। तो भावना से तो खाना तो बहुत अच्छा है, भावना से खाओगे तो कम खाओगे, भावना से खाओगे तो कम, भावना से कौन खा रहा है। कल हमने 3 बातें देखी, भोजन बनाना, भोग लगाना और भोजन करना। भावना से, इस पर भगवान की दृष्टि पड़ी है, कितनी ऊंची भावना है, बाबा ने दृष्टि दी है, उसकी दृष्टि तो क्या कुछ कर सकती, तो ज्यादा खाने की आवश्यकता ही नहीं। दूसरा है एक्सरसाइज, अगर रोज एक्सरसाइज होती रहेगी तो भोजन कम करेंगे, बिंज ईटिंग नहीं होगा, इमोशनल ईटिंग नहीं होगा। तीसरा है जो कल भी बताया था कि प्लेट छोटी कर दो, चम्मच छोटा कर दो और छोटे छोटे बाइट्स दो, और अपने चबाने का आवाज खुद को आना चाहिए, और डिस्ट्रैक्शन सब हटा दो। ये बड़ा हम इस पर काम कर रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन सारे हट जाए, मोबाइल कुछ भी नहीं रहना चाहिए, वो उधर ही रख दो, केवल सतत दृष्टि भोजन पर। इसका अभ्यास आज करेंगे सारे दिन भर, जूस भी पी रहे हैं पानी भी पी रहे हैं तो बैठ जाओ और आराम से पियो, या अपने कमरे में ले जाओ बॉटल भर के और वहां पियो धीरे धीरे। कि वो पहले दिन देखा ना हमने, पानी का भी देखा क्या क्या करना है उसके साथ, उसके बाद में डिस्ट्रैक्शंस, प्ले अटेंशन टू वॉल्यूम, बहुत ज्यादा लेना नहीं, क्योंकि हम क्या कर लेते हैं, चिप्स की एक, अभी हम क्यों ज्यादा खाते हैं, क्योंकि ये वेस्ट ना जाए, गृहस्थियों में माता है क्यों खा लेती है, अरे खा लो ना, ये फेंकना नहीं पड़ेगा, गाय के पेट में जाने दो वो अच्छा है तुम्हारे पेट में जाने से, गाय दुआ देगी, चिंता मत करो, गाय के पेट में जाने दो तुम्हारे पेट में जाने से अच्छा, तुम बीमार पड़ोगे उसको इतना कुछ नहीं होगा, वो पचा लेगी। तो ये सोचो ही मत, और सबसे पहले बनाओ ही कम, पहले ही ज्यादा बना लेते अब कहते क्या करें, खाना तो पड़ेगा क्योंकि है, फेंक नहीं सकते ना। फिर उसके बाद में ये जो यात्रा है ब्रदरियन की, इसमें अच्छा होगा कि कोई पार्टनर साथ में हो, बहने बहनों को बनाए, भाई भाई को बनाए, उल्टा मत करना नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, वो कहेगी मैंने आज ये बनाया तुम्हारे लिए, अच्छा फिर तो दोस्ती हो जाएगी। तो बहने प्राणिक पार्टनर, प्राण निकल जाएंगे। तो प्राणिक पार्ट, तो कोई एक पार्टनर अगर हो ना तो ये यात्रा बड़ी सहज हो जाती है, कि दोनों व्यक्ति बहुत कॉन्शियस है, दोनों साथ साथ कर रहे, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। साथ में सनगेजिंग कर रहे, साथ में ये सब भोजन ट्राई कर रहे, रेसिपीज बना रहे, पूरा घर ही प्राणिक फैमिली है, तो ये बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा, कभी कभी पर बहुत ज्यादा इच्छा हुई ना तो ज्यादा दमन नहीं करना है, खा लो। वंस इन अ वे ईट अनहेल्दी फूड इन दिस पाथ, दिस विल कीप यू ऑन द पाथ, क्योंकि उसमें थोड़ा सफरिंग होगा, पर वो सफरिंग जरूरी है। इच्छा ही हो गई आइसक्रीम खाने की, खा लो, अब ज्यादा दमन नहीं करो, फिर पता चलेगा जो कुछ होगा होगा, पर ज्यादा दबाना नहीं है अपने आप को, ठीक है। और थोड़ी छोटी 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 विक्ट्री हो जाती नहीं, उसको सेलिब्रेट भी करो, क्योंकि हमारा भोजन के साथ संबंध बहुत गहरा है, तो इतना आसान नहीं है ये यात्रा। जिसने भोजन को जीता उसने समझ लो विश्व को जीत लिया, अपने भूख को जिसने जीता, वन हु कॉन्कर्स हंगर कॉन्कर्स द होल वर्ल्ड, इससे बड़ी कोई जीत ही नहीं है। क्यों इस पर इतना हम स्ट्रेस दे रहे, क्योंकि ये सभी चीजों से लिंक्ड है। इसके लिए हमारे दो व्यक्तित्व है, मैं भोजन के साथ, मैं बिना भोजन के, विथ फूड विदाउट फूड। आपका अगर कोई दिन में अपमान करता है, ठीक है, तो आप जब भोजन ले रहे हो उस दिन की आपकी प्रतिक्रिया दूसरी है, अगर आप उपवास में हैं तो आपकी प्रतिक्रिया दूसरी है। आपको अगर एक्स्ट्रा काम दे दिया गया, आपके पार्टनर को कहा तुम जाओ छुट्टी होगी तुम्हारी, तुम जाओ थोड़ा आराम करो, और उसका काम भी हमको दे दिया गया, उसकी सेवा भी हमको, अगर हमने खाना वगैरह खाया हुआ है उस दिन, तो भावना है इंचार्ज के प्रति निगेटिव। पर हम अगर उपवास की अवस्था में है तो कुछ नहीं होगा, सेंटरिंग होगा, हम यहां स्थित रहेंगे। इतना गहरा कनेक्शन है, और ये हम अनुभव से बोल रहे हैं, इसमें कोई किताब का हाथ नहीं है, इसमें किसी व्यक्ति का रोल नहीं है, ना मेरा कोई मैनिपुलेटर है जो मेरा रिमोट किसी के हाथ में और जो कहता है वहां बैठकर ये सुनाना। ये हम नॉन ईटिंग की अवस्था में हमारे रिएक्शंस दूसरी है, नॉन ईटिंग की अवस्था में हमारे फीलिंग्स इमोशंस दूसरे है, पर एक दिन में नॉन ईटिंग की स्टेज नहीं आएगी, धीरे धीरे पहुंचना है। तो पहले समझना है, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। कोई व्यक्ति कहता है मुझे दारू छोड़ानी है, हम उसको कहते हैं पीते रहो, खाली दारू के रोज 5 नुकसान पढ़ो, क्या होता है? दारू पीना चालू रखो, छोड़ना बिल्कुल नहीं, पर उससे नुकसान क्या क्या होता है रोज पढ़ते रहो, एक दिन खुद ही छोड़ देता है। यह है युक्ति, उसको अगर कहो छोड़ो तो कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए भोजन को समझना है, ठीक है। तो कहां तक चलते थे अब तक? सुमनों पर, आप किस में चलेंगे? कांटों पर। तो ये मार्ग कांटों का है, परंतु आगे सुमन आएंगे। अब तक सुमनों पर चलते थे, अब कांटों पर चलना सीखे। ओम शांति।
अब तक सुमनों पर चलते थे, अब कांटों पर चलना सीखे। अब तक सुमनों पर चलते थे, अब कांटों पर चलना सीखे। अब तक सुमनों पर चलते थे, हिमालय दृढ़ता का नित पाठ पढ़ाता। बहे निरंतर ध्येय सिंधु तक, सरिता का जल कण बतलाता। अपने दृढ़ निश्चय से पथ की बाधाओं को डहना सीखें, अब कांटों पर चलना सीखें, अब तक सुमनों पर चलते थे। अपनी रक्षा आप करे जो देता उसका साथ विधाता, अन्यों पर अवलंबित है जो पग पग पर वह ठोकर खाता। जीवन का सिद्धांत अमर है, उस पर हम नित चलना सीखें, अब कांटों पर चलना सीखें, अब तक सुमनों पर चलते थे।